एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो हमारी धरती के भविष्य के लिए एक बेहद जरूरी मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन उसके एक बहुत अहम पहलू पर गहराई से नजर डालती है।
बिल्कुल, किताब का नाम है कार्बन निष्कासन, यानी कार्बन रिमूवल। लेखक हैं हॉवर्ड जे हर्जॉग और नील मैकडॉवेल। और ये विषय, मतलब आजकल खबरों में तो रहता है पर शायद उतना समझा नहीं जाता है ना?
हाँ, सही कहा। हम सब सुनते हैं कि भाई कार्बन उत्सर्जन कम करो, गाड़ियां कम चलाओ, फैक्ट्रियां साफ करो, ये सब तो जरूरी है ही।
हाँ, जरूरी तो है,
लेकिन सवाल ये है कि क्या बस इतना ही काफी है?
तो यही वो बड़ा सवाल है जो ये किताब उठा रही है। लेखकों का तर्क है कि सिर्फ भविष्य के उत्सर्जन को रोकना शायद काफी न हो, हमें उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी देखना होगा जो हम पहले ही हवा में छोड़ चुके हैं।
बिल्कुल, उससे वापस खींचना होगा। पेरिस समझौते के जो लक्ष्य हैं, तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सी या 2 डिग्री सी तक सीमित रखने के, उनको पाने के लिए ये कार्बन हटाना अब एक जरूरत बन गया है। अब ये कोई ऑप्शन नहीं रहा।
तो फिर सबसे पहले इन लेखकों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आखिर कौन है ये लोग जिन्होंने इतना मुश्किल और जरूरी विषय चुना है? इनका नजरिया क्यों खास है?
हाँ, ये जानना अहम है क्योंकि दोनों ही अपने अपने फील्ड के क्या कहते हैं विशेषज्ञ हैं। हॉवर्ड हर्जॉग जो है वो MIT एनर्जी इनिशिएटिव में सीनियर रिसर्च इंजीनियर है।
MIT से?
हाँ, और उन्हें कार्बन कैप्चर और स्टोरेज, जिसे CCS कहते हैं, मतलब फैक्ट्री से निकलने वाले कार्बन को पकड़ना और जमा करना, इसमें 30 साल से ज्यादा का अनुभव है।
अच्छा, मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं, इन्हें पता है कि जमीन पर काम कैसे होता है, क्या चुनौतियां आती हैं।
बिल्कुल, वो इंजीनियरिंग की बारीकियां समझते हैं। और जो दूसरे लेखक हैं नील मैकडॉवेल, वो लंदन के इंपीरियल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उनकी विशेषज्ञता एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग में है और साथ ही इन तकनीकों के आर्थिक और नीतिगत पहलू क्या हैं वो भी देखते हैं। वो एक सिस्टम थिंकिंग लाते हैं, मतलब ये कि ये कार्बन हटाने की जो तकनीकें हैं ये हमारी पूरी ऊर्जा व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर, जमीन पानी जैसे संसाधनों पर क्या असर डालेंगी, वो इस पूरी बड़ी तस्वीर को देखते हैं।
अच्छा, तो एक तरफ इंजीनियरिंग की गहरी समझ, दूसरी तरफ पूरे सिस्टम का विश्लेषण, ये तो वाकई एक मजबूत जोड़ी है। लगता है कि ये किसी एक टेक्नोलॉजी के पक्ष में नहीं बोलेंगे बल्कि तथ्यों के आधार पर बात करेंगे।
सही कहा, उनका अप्रोच काफी संतुलित लगता है। अब आते हैं किताब पर। किताब कहना क्या चाहती है असल में, क्या है इसका मुख्य संदेश?
मेरे ख्याल से ये किताब एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने यानी कि CDR की दुनिया के लिए एक गाइड जैसी है। और ये सिर्फ वैज्ञानिकों या पॉलिसी बनाने वालों के लिए नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आम लोगों के लिए भी है, निवेशकों के लिए है, पर्यावरण की चिंता करने वालों के लिए है, मतलब हर वो इंसान जो जलवायु परिवर्तन के समाधानों को ठीक से समझना चाहता है।
हाँ, और किताब का जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये कि CDR अब कोई भविष्य की कल्पना या कोई प्लान भी नहीं है।
नहीं,
ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने की हमारी रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है।
हाँ, अनिवार्य। क्यों? क्योंकि हमने पिछले 100-150 सालों में हवा में इतना ज्यादा CO2 भर दिया है कि अब हम पर एक तरह का कार्बन कर्ज चढ़ गया है।
कार्बन कर्ज, सही शब्द है।
हाँ, और इस कर्ज को चुकाने के लिए हमें हवा से CO2 वापस निकालना ही पड़ेगा।
लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो लेखक बार बार कहते हैं ना, कि CDR जो है वो उत्सर्जन कम करने का विकल्प नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये सबसे अहम बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि चलो भाई अभी उत्सर्जन करते रहो, अब बाद में मशीनें लगाकर सब साफ कर देंगे।
नहीं, ये सोच गलत होगी।
बिल्कुल, हमें सबसे पहले और सबसे तेजी से अपने उत्सर्जन घटाने होंगे। कोयला, तेल, गैस जलाना बंद करना होगा। CDR एक पूरक है, मतलब साथ चलने वाली चीज,
सप्लीमेंट्री।
हाँ, ये उस पुराने CO2 को हटाने के लिए है जो पहले से हवा में है, और उन मुश्किल सेक्टर के उत्सर्जन के लिए है जहाँ शून्य पर लाना बहुत कठिन है,
जैसे हवाई जहाज, समुद्री जहाज, सीमेंट उद्योग वगैरह।
हाँ बिल्कुल।
और किताब की एक और अच्छी बात यह लगती है कि ये किसी एक तरीके को हीरो नहीं बनाती।
नहीं, वो सभी तरीकों का मूल्यांकन करती है।
हाँ, पेड़ लगाने से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों तक,
जितने भी तरीके हैं सबका ईमानदारी से विश्लेषण, किसकी कितनी क्षमता है, खर्चा कितना आएगा, जोखिम क्या है, सीमाएं क्या है, सब कुछ। बिल्कुल, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। किताब के मुख्य विचारों या अध्यायों पर बात करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि हमें CDR की जरूरत ही क्यों पड़ी।
किताब की शुरुआत ही एक कड़वी सच्चाई से होती है, हमारा कार्बन बजट। ये वो सीमा है कि हम और कितना CO2 छोड़ सकते हैं ताकि धरती का तापमान खतरनाक स्तर तक ना बढ़े, जैसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा।
और सच क्या है?
सच ये है कि ये बजट लगभग खत्म हो चुका है। हमने अपनी गुंजाइश मतलब लगभग पूरी इस्तेमाल कर ली है।
हाँ, ये तो चिंता की बात है। और जो वैज्ञानिक मॉडल हमें भविष्य के रास्ते दिखाते हैं, जैसे IPCC की रिपोर्ट्स में होते हैं,
हाँ,
उनमें से लगभग सभी रास्ते जो हमें सुरक्षित तापमान सीमा में रखते हैं, उनमें इस सदी के दूसरे हिस्से में नेट नेगेटिव उत्सर्जन शामिल है।
नेट नेगेटिव उत्सर्जन, इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब है कि हमें हवा से उतना CO2 हटाना होगा जितना हम छोड़ रहे हैं, और उससे भी ज्यादा।
ओह, मतलब जितना निकाल रहे हैं उससे ज्यादा सोखना पड़ेगा।
हाँ, तो ये अब कोई पसंद की बात नहीं रही, ये गणित की जरूरत बन गई है। हिसाब बराबर करने के लिए भी हटाना पड़ेगा।
वाकई ये तो सोचना ही पड़ेगा। अच्छा, किताब एक और कंफ्यूजन दूर करती है, CDR, CCS और SRM के बीच का फर्क। ये शब्द अक्सर सुनने में आते हैं पर शायद सबको साफ ना हो।
हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत आसान भाषा में CDR यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, ये हवा में पहले से मौजूद CO2 को पकड़ता है। ये पुरानी उधारी चुकाने जैसा है।
ठीक है, पुराना वाला।
हाँ, फिर है CCS, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ये फैक्ट्री या पावर प्लांट जैसे स्रोत पर ही नया CO2 उत्सर्जन रोकता है, उसे हवा में जाने से पहले पकड़ लेता है।
ये नई उधारी लेने से रोकने जैसा हुआ।
बिल्कुल। और तीसरा है SRM, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। ये सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेजकर धरती को ठंडा करने का एक तरीका है, जैसे वातावरण में कुछ कण छोड़ना।
ये तो मतलब जैसे बुखार कम करने की गोली हो गई।
हाँ बिल्कुल, ये लक्षण कम करता है लेकिन जो बीमारी की जड़ है यानी CO2, उसका इलाज नहीं करता।
समझ गया, तो ये किताब पूरी तरह CDR पे केंद्रित है, यानी पुरानी उधारी चुकाने पर।
हाँ,
तो अब आते हैं तरीकों पर। सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना तरीका है पेड़ लगाना, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, AR जिसे कहते हैं।
हाँ,
ये तो हम सबने सुना ही है।
हाँ, और इसके फायदे भी हैं, कौन नहीं जानता, जैसे जैव विविधता बढ़ती है, मिट्टी की सेहत सुधरती है। लेकिन लेखक इसकी चुनौतियां भी गिनवाते हैं। पहली चुनौती है पैमाना, स्केल।
स्केल,
हाँ, हमें अरबों टन CO2 हटाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा जमीन चाहिए होगी, मतलब शायद भारत या अमेरिका जितने बड़े इलाके में जंगल लगाने पड़े।
अरे बाप रे, इतनी जमीन।
हाँ,
और ये जमीन कहाँ से आएगी? ये वो जमीन हो सकती है जो खाना उलाने या शहरों के लिए इस्तेमाल हो रही हो, तो यहाँ टकराव हो सकता है। और दूसरा बड़ा सवाल उठता है स्थायित्व का, परमानेंस का। मतलब मान लीजिए हमने जंगल लगा भी दिए,
हाँ,
पर कल को उनमें आग लग गई या कोई बीमारी फैल गई या उन्हें किसी वजह से काट दिया गया,
तो सारा जमा किया हुआ कार्बन वापस हवा में चला जाएगा।
बिल्कुल, और ये भी है कि पेड़ हमेशा एक ही रफ्तार से कार्बन नहीं सोखते हैं ना, एक उम्र के बाद उनकी क्षमता कम हो जाती है।
हाँ, वो संतृप्ति का बिंदु आ जाता है।
इसके बाद किताब बात करती है BECCS की, बायो एनर्जी विथ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ये थोड़ा पेचीदा और विवादास्पद भी है।
BECCS
ये कैसे काम करता है?
इसमें क्या करते हैं कि बायोमास उगाते हैं, जैसे कोई खास फसल या तेजी से बढ़ने वाले पेड़, फिर उस बायोमास को बिजली बनाने के लिए जलाते हैं।
अच्छा, जैसे कोयले की जगह बायोमास जलाया।
हाँ, और जब जलाते हैं तो चिमनी से जो CO2 निकलती है उसे CCS तकनीक से पकड़कर जमीन के नीचे स्टोर कर देते हैं।
सुनने में तो ये कार्बन नेगेटिव लगता है। पौधे ने हवा से CO2 लिया, हमने उसे जलाया और निकली CO2 पकड़ ली, तो नेट नतीजा तो नेगेटिव हुआ ना, है ना?
सिद्धांत में तो यही है, लेकिन व्यवहार में कई मुश्किलें हैं। पहली बात, इसके लिए भी बहुत ज्यादा जमीन और पानी चाहिए।
फिर वही जमीन का मुद्दा।
हाँ, जो फिर से खाने की पैदावार पर असर डाल सकता है।
बिल्कुल।
दूसरी बात, बायोमास को उगाने, काटने, ट्रांसपोर्ट करने, इन सब में भी तो ऊर्जा लगती है और उत्सर्जन होता है।
हाँ, उसका पूरा जीवन चक्र देखना होगा।
बिल्कुल। ब्रिटेन के ड्रैक्स पावर स्टेशन का उदाहरण है जिस पर काफी बहस हुई है। तो BECCS की असल क्षमता कितनी है, इस पर अभी काफी सवाल है।
तो ये भी कोई आसान समाधान नहीं लगता। फिर आती है इंजीनियरिंग वाली तकनीकें, जिनमें आजकल सबसे ज्यादा चर्चा है, DACC, डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज।
हाँ,
DACC, इन्हें आप एक तरह से कृत्रिम पेड़ या हवा साफ करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें कह सकते हैं।
मशीनें ये कैसे काम करती हैं?
ये बड़े बड़े पंखों से हवा खींचती हैं और फिर कुछ खास केमिकल फिल्टर्स या सोखने वाले पदार्थों सॉर्बेंट्स से उस हवा में मौजूद CO2 को अलग कर लेती हैं।
अच्छा।
और फिर उस पकड़ी हुई CO2 को या तो इस्तेमाल करते हैं या फिर जमीन के नीचे स्टोर कर देते हैं।
इनका क्या फायदा है पेड़ों के मुकाबले?
इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन्हें कहीं भी लगाया जा सकता है, रेगिस्तान में भी, तो जमीन की उतनी दिक्कत नहीं है जितनी पेड़ लगाने या BCS में है।
लेकिन इसमें भी कुछ लेकिन होगा जरूर।
हाँ, सबसे बड़ा लेकिन है ऊर्जा और लागत। हवा में CO2 की मात्रा बहुत कम है, सिर्फ 0.04%।
हाँ, बहुत फैली हुई है।
तो उस फैली हुई CO2 को छानकर निकालना मतलब बहुत बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करना, और ज्यादा ऊर्जा मतलब ज्यादा खर्चा।
और ऊर्जा भी तो साफ होनी चाहिए, वरना क्या फायदा है?
बिल्कुल, अगर कोयले से बिजली बनाकर DAC चलाएंगे तो नेट फायदा शायद कुछ ना हो या बहुत कम हो। आइसलैंड में क्लाइमवर्क्स का ऑर्का प्लांट है जो ये कर रहा है, वो दिखाता है कि ये संभव है, पर अभी स्केल बहुत छोटा है और लागत बहुत ज्यादा। मतलब एक टन CO2 हटाने का खर्चा $200 तक आता है।
$200 प्रति टन, ये तो बहुत महंगा है अभी।
क्या इनके अलावा भी कोई और तरीके हैं जिनका किताब जिक्र करती है? हाँ, किताब कुछ और उभरते हुए तरीकों पर भी बात करती है, जैसे इन्हेंस्ड वेदरिंग है, इसमें कुछ खास तरह की चट्टानों को पीसकर खेतों या समुद्र में फैलाते हैं ताकि वो प्राकृतिक रूप से CO2 सोखें।
अच्छा, ये तो दिलचस्प है।
हाँ, फिर बायोचार है, ये एक तरह का चारकोल होता है जिसे बायोमास से कम ऑक्सीजन में जलाकर बनाते हैं और फिर मिट्टी में मिला देते हैं। ये मिट्टी को भी बेहतर बनाता है और कार्बन को लंबे समय तक लॉक कर देता है। और समुद्र आधारित तरीके भी हैं जिन पर रिसर्च चल रही है, लेकिन ये सब अभी काफी शुरुआती दौर में है। इनकी क्षमता, लागत, जोखिम, इन सबको समझने के लिए अभी बहुत काम बाकी है।
तो कुल मिलाकर संदेश ये लग रहा है कि कोई एक जादुई गोली या सिल्वर बुलेट नहीं है।
बिल्कुल नहीं, किताब का यही सार है, हमें एक पोर्टफोलियो बनाना होगा, मतलब कई अलग अलग तरीकों का मिश्रण इस्तेमाल करना होगा उनकी जगह और जरूरत के हिसाब से।
पोर्टफोलियो अप्रोच।
हाँ, और सबसे बड़ी बात जो बार बार सामने आती है वो है स्केल। इन सबको उस पैमाने पर ले जाना, यानी हर साल अरबों टन CO2 हटाना।
अरबों टन?
हाँ, गीगाटन स्केल पर। ये एक अभूतपूर्व, मतलब अनप्रीसिडेंटेड चुनौती है। इसके लिए जमीन, पानी, ऊर्जा की जरूरतें बहुत बहुत बड़ी होंगी। ये शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक साबित होगी।
तो अगर हम अब किताब के जो मुख्य संदेश हैं, जो की थीम्स हैं, उन्हें समेटने की कोशिश करें तो क्या निकल कर आता है?
देखिए, मेरे हिसाब से पहला और सबसे अहम संदेश तो यही है, CDR अब जरूरी है, वैकल्पिक नहीं रहा, और इसे उत्सर्जन कटौती के साथ साथ करना है, उसके बदले में नहीं।
ये बात तो एकदम साफ है। दूसरा,
स्थायित्व बहुत मायने रखता है, परमानेंस, यानी जो कार्बन हटाया गया है वो कितने समय तक हवा से बाहर रहेगा।
हाँ, ये फर्क महत्वपूर्ण है। पेड़ का कार्बन शायद कुछ दशक या सदी तक रहे अगर जंगल बचा रहा तो।
बिल्कुल, जबकि जमीन के नीचे जियोलॉजिकल स्टोरेज में दबाया गया कार्बन हजारों लाखों साल तक रह सकता है। तो हर तरीके का स्थायित्व अलग है और ये हमें ध्यान में रखना होगा।
ठीक है, तीसरा संदेश।
तीसरा, जैसा अभी हमने कहा, पैमाना, स्केल, ये शब्द किताब में बार बार गूंजता है। हमें आज लगभग शून्य से बढ़कर 2050 तक अरबों टन, गीगाटन CO2 सालाना हटाने की जरूरत होगी।
और ये कितना होता है, इसका अंदाजा कैसे लगाए?
अंदाजा ऐसे लगाइए कि आज पूरी दुनिया में जितना बड़ा तेल और गैस का उद्योग है, लगभग उतने ही बड़े पैमाने का एक नया उद्योग हमें सिर्फ अगले 25-30 सालों में खड़ा करना होगा, और वो भी ज्यादातर साफ ऊर्जा पर चलने वाला।
बाप रे, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। चौथा संदेश क्या है?
चौथा है लागत और ऊर्जा का मुद्दा। खासकर DAC जैसी मशीन वाली तकनीकें फिलहाल बहुत महंगी हैं और इन्हें चलाने के लिए भारी मात्रा में स्वच्छ ऊर्जा चाहिए होगी।
हाँ, ये जुड़वा चुनौतियां हैं, लागत कम करना और साथ ही इतनी सारी स्वच्छ ऊर्जा का इंतजाम करना।
बिल्कुल, और पांचवा है नैतिक खतरा, मॉरल हैजर्ड, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया।
हाँ, ये डर कि कहीं CDR की उम्मीद हमें आज मेहनत करने से रोक ना दे, कि उत्सर्जन कम करने में हम ढीले पड़ जाएं, अरे बाद में साफ कर लेंगे वाली सोच।
हाँ, ये एक वास्तविक जोखिम है, लेखक इसे मानते हैं,
लेकिन उनका तर्क है कि इसे मैनेज करना होगा, हमें दोनों काम एक साथ पूरी गंभीरता और पूरी ताकत से करने होंगे। सीडीआर अतीत की सफाई के लिए, भविष्य में और गंदगी फैलाने का लाइसेंस नहीं।
इसे घर की सफाई वाले उदाहरण से अच्छे से समझा जा सकता है। रोज कूड़ा बाहर फेंकना, उत्सर्जन रोकना जरूरी है, लेकिन अगर सालों का कबाड़ जमा हो गया है, पुराना CO2, तो उसकी भी तो सफाई करनी पड़ेगी। CDR वही पुरानी सफाई है।
बिल्कुल सही।
किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार भी होंगे जो खास तौर पर दिमाग में रह जाते हों, कुछ ऐसे कोट्स या मुख्य विचार साझा कर सकते हैं जो किताब के सार को अच्छे से पकड़ते हों?
ये नहीं कि हमें कार्बन हटाने की जरूरत है या नहीं, बल्कि ये है कि कितना हटाना है, किन तरीकों से हटाना है और इसका भुगतान कौन करेगा।
ये दिखाता है कि सवाल अब अगर का नहीं, कैसे और कौन का है, और ये कितना मुश्किल और खर्चीला होने वाला है इसका भी इशारा है।
हाँ, फिर एक और विचार है जो पैमाने की विशालता को दर्शाता है। जलवायु के स्तर पर CO2 हटाने के लिए हमें एक ऐसा वैश्विक उद्योग बनाना होगा जिसकी ऊर्जा खपत आज के पूरे जीवाश्म ईंधन सिस्टम के बराबर हो, और ये लगभग पूरी तरह स्वच्छ ऊर्जा से चलना चाहिए।
ये न सिर्फ चुनौती का आकार बताता है, बल्कि ये भी साफ करता है कि CDR और स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। एक के बिना दूसरा संभव नहीं लगता।
बिल्कुल। और नैपिक खतरे पर वो स्पष्टता भी बहुत जरूरी है। Quote 3, मॉरल हैजर्ड। कार्बन हटाना अतीत के प्रदूषण को साफ करने का एक जरूरी उपकरण है, न कि वर्तमान में प्रदूषण जारी रखने का बहाना। इसे उत्सर्जन कटौती के समानांतर एक अतिरिक्त स्तंभ के रूप में अपनाया जाना चाहिए।
मतलब ये कोई गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड नहीं है जैसा फिल्मों में होता है। पहले अपना काम करो, उत्सर्जन घटाओ और साथ में सफाई भी करो।
हाँ, यही संदेश है।
अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का हम जैसे आम लोगों के लिए क्या मतलब है? ये सब तकनीक, पैमाना, लागत, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ये सब कैसे जुड़ता है?
देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहली बात तो ये कि ये जानकारी हमें जागरूक बनाती है। जब कोई कंपनी या सरकार नेट जीरो का दावा करती है तो हम बेहतर सवाल पूछ सकते हैं।
जैसे?
जैसे हम पूछ सकते हैं, अच्छा, आप नेट जीरो कैसे बन रहे हैं? क्या आप सच में अपने उत्सर्जन कम कर रहे हैं, या सिर्फ पेड़ लगाने के सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं जिसे ऑफसेटिंग कहते हैं, या फिर आप भविष्य की किसी CDR तकनीक के भरोसे बैठे हैं? आप कौन से तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो स्थायी हैं? उनकी लागत कौन उठा रहा है?
हाँ, ये हमें बेहतर सवाल पूछने की ताकत देता है। आजकल कई प्रोडक्ट्स पर लिखा होता है कार्बन न्यूट्रल। ये किताब पढ़ने के बाद कोई भी समझ सकता है कि इसका असली मतलब क्या है और क्या वो दावा भरोसेमंद है भी या नहीं।
बिल्कुल। क्या उन्होंने सच में कार्बन हटाया है या सिर्फ कहीं और उत्सर्जन करने की अनुमति खरीद ली है, ये जानना जरूरी है।
और एक नागरिक के तौर पर?
एक नागरिक के तौर पर हम अपनी सरकारों से सही नीतियां बनाने की मांग कर सकते हैं। ऐसी नीतियां जो उत्सर्जन कटौती को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें, लेकिन साथ ही CDR पर रिसर्च और डेवलपमेंट में भी निवेश करें। और सबसे जरूरी, एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जो ये पक्का करे कि जो कार्बन हटाने का दावा किया जा रहा है वो वाकई हटाया गया है और वहीं टिका रहेगा। इसके लिए मजबूत MRV सिस्टम चाहिए, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन, ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो।
मतलब ये जानकारी हमें एक बेहतर और ज्यादा सूचित उपभोक्ता, निवेशक और नागरिक बनने में मदद करती है। हम हवा हवाई दावों और असली समाधानों के बीच फर्क कर पाते हैं।
बिल्कुल सही कहा।
चलिए, अब हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। इस किताब को पढ़ने और इस पर बात करने के बाद आपके लिए सबसे बड़ी सीख या शायद सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए तो शायद सबसे चौंकाने वाली बात वो पैमाने का एहसास ही था। अरबों टन CO2 हर साल हवा से निकालना, ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसे पूरी तरह से समझना भी मुश्किल लगता है। और फिर ये सोचना कि इसके लिए जिस स्तर के वैश्विक सहयोग, निवेश और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी, वो सच में अभूतपूर्व है। क्या हम इंसान वाकई ये कर पाएंगे? ये सवाल मन में आता है।
और मेरे लिए शायद सबसे अहम सीख ये है कि कोई आसान जवाब या कोई एक जादुई गोली नहीं है, सिल्वर बुलेट नहीं है। हर समाधान के अपने फायदे हैं, अपनी सीमाएं हैं, अपनी लागत है, अपने दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हमें बहुत ईमानदारी से, बहुत खुले दिमाग से इन सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना होगा।
हाँ, ये जरूरी है।
ये एक बहुत जटिल पहेली है जिसे हमें मिलकर सुलझाना होगा। पेड़ लगाना अच्छा है, पर शायद काफी नहीं। मशीनें ज्यादा स्थायी हो सकती हैं, पर फिलहाल बहुत महंगी और ऊर्जा गहन है। हमें एक मिलाजुला, समझदारी भरा रास्ता खोजना होगा।
और ये भी कि हमें काम तुरंत शुरू करना होगा,
इंतजार करने का समय नहीं है। उत्सर्जन कटौती पर जोर देने के साथ साथ CDR पर भी गंभीरता से और समझदारी से काम शुरू करना ही होगा, क्योंकि जैसा किताब कहती है, कुछ ना करने की कीमत, इनएक्शन की कीमत बहुत ज्यादा होगी।
बिल्कुल, और ये किताब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम एक समाज के रूप में, एक वैश्विक समुदाय के रूप में इस विशाल अभूतपूर्व चुनौती का सामना करने के लिए सच में तैयार हैं? क्या हम इसके लिए जरूरी खरबों डॉलर का निवेश जुटाने और भारी मात्रा में स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने के लिए तैयार हैं, और वो भी तब जब हमें साथ ही साथ अपने पूरे मौजूदा ऊर्जा और आर्थिक सिस्टम को भी बदलना है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा और जिस पर हम सभी को गहराई से विचार करना चाहिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।